नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयेम उदीरयेत् शर्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन प्रदीयन्तस्ते हि भद्राणि नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टकी ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 7 अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 29 मेरे पीछे दोहराइए श्री नारद उवाच इत्ययुक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवोपसा वर्तन्त गतोद्वेगा निरे चासुरं मतम् श्री नारद उवाच
भगवान से तादात्म्य चाहे तो वे बुद्धिमान भगवान कहलाता है, जब वह दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करता है, चाहे कोई कर्मी हो अथवा ज्ञानी या योगी, यदि वह किसी वर की पूर्ति चाहता है तो उसे भगवान के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि तभी उसकी पूर्ति होगी। किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए किसी देवता के पास अलग से जाने की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण। परम साधु नारद मुनि ने कहा, जब सबों के गुरु भगवान ने स्वर्ग में रहने वाले सभी देवताओं को इस तरह आश्वस्त कर दिया तो उन सबों ने उन्हें प्रणाम किया और विश्वस्त होकर लौट आए। अब तो हिरण्यकश्यपु एक तरह से मर चुका है। शब्दार्थ में लिखा है जाओ सरम मतम, कि असुर की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद लोकवाद जो है चर्चा करते हैं देवताओं की और भगवान की पूजा के डिफरेंस के बारे में, कि दोनों की पूजा में अंतर क्या है, कि भगवान की पूजा का क्या लाभ है और देवताओं की पूजा का क्या नुकसान है या क्या लाभ है, इसकी चर्चा। तो यहां पर शुरू करते हैं। अल्प बुद्धि लोग जो सदैव देवताओं की पूजा में व्यस्त रहते हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि जब जब देवताओं को असुर सताते हैं तब तक वे अपनी रक्षा के लिए भगवान के पास पहुंचते हैं। द्वापर के अंदर भगवान अवतीर्ण हुए हैं 5000 साल पहले। उसके पहले क्या घटना हुई कि भगवान को यहां आना पड़ा, क्या क्या कारण बना, कौन रिक्वेस्ट करने गया था भगवान के पास, कहां गए थे रिक्वेस्ट कर, कौन कौन गया था? भूमि गई थी ब्रह्मा जी के पास और गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा बाकी देवताओं के पास चलो, ऐसा कुछ उल्टा नहीं लग रहा, उल्टा हो गया। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहले देवलोक आता है या पहले ब्रह्मा जी का लोक आता है, तो पहले किसके पास जाना होता है, ठीक है कि नहीं, रास्ता यही है ना। तो भूमि ने किसका रूप धारण किया, कष्ट में थी, तकलीफ में थी, असुरों का अत्याचार हो रहा था, अधर्म हो रहा था, तो दुखी होकर वो देवताओं के पास गई। देवताओं ने कहा हमारे बस की बात नहीं, ऐसे ही बोला ना। फिर कहां गए थे, देवता लेके गए उसको, भूमि सेल्फ अपने आप नहीं गई, अपने तो उसकी लिमिट थी, देवता तक पहुंच गई, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। देवता कहां ले गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ऊपर चलो, ऊपर चलो। तो यहां से क्या परिलक्षित होता है कि हम लोग जो कई बार ये सोचते हैं कि देवता की भक्ति कर ली, देवता की पूजा कर ली तो हमारे सारे मनोरथ सिद्ध हो गए, इसका मतलब यह है कि देवता लोग सारे मनोरथ सिद्ध करने में हस्त सारे कुछ कुछ मनोरथ करते हैं। कुछ मनोरथ ऐसे हैं, कुछ हमारी ऐसी रिक्वेस्ट है, कुछ हमारी डिमांड ऐसी हैं जो देवता फुलफिल कर सकते हैं, परंतु क्या सारी डिमांड फुलफिल कर सकते हैं? अगर सारी डिमांड फुलफिल कर सकते होते तो भूमि को उसके ऊपर ले जाने की उनकी आवश्यकता नहीं थी। मेरे पास आ गई हो, हम अपने आप इंतजाम कर लेंगे, जाओ रिलैक्स करो, ऐसा कहा गया, ऐसा बोला, ऊपर ले गए ना। और उसके ऊपर फिर गए, कहां गए, शिव जी के पास। फिर वहां से कहां गए, वहां से कहां गए, वहीं नहीं रह गए, किसने कहा कि मैं पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा? किसने कहा? उन्हीं के पास जाना बनता है ना, अल्टीमेटली किसके पास जाना बनता है? जो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, ये तो नहीं कहा कि वो आएंगे, ऐसा तो नहीं बोला ना किसी ने, वहां ने कहा कि मैं आऊंगा। तो जो आपकी समस्या का हल है, समस्या का हल किस लेवल पे हो रहा है, कौन कर रहा है? तो यहां जो है चर्चा यही आ रही है, जब आप भगवत गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक पढ़ते हो, उसमें स्पष्ट लिखा है वासुदेवम सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभा। जो भगवान को ये स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ ही वासुदेव हैं, वो महात्मा हो गया। महात्मा मतलब महान आत्मा, महापुरुष। क्यों? कि उसने जो है अनेक जन्मों के बाद ये स्वीकार कर लिया है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान मात्र पद्धति, ज्ञान हो गया है उसको, ये नॉलेज मिल गई है। क्या? कि वासुदेवम सर्वम इति, कि वासुदेव ही सब कुछ, एवरीथिंग। कैसे समझेंगे इसे? कि सब कुछ भगवान कृष्ण है, इस बात को समझा कैसे जाएगा? भगवान की प्रकृति जिससे यह संसार बना है, किसका अंश है? किसका अंश है? जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है या ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो तब सारे जीव किसमें समा जाते हैं और फिर वहां से बाहर आते हैं। जब सर्ग होता है, महासर्ग होता है, तो अल्टीमेटली जो भगवान की प्रकृति है जिससे हमारे शरीर बने हैं, भगवान की प्रकृति जो हमें दिखाई दे रही है, किसका अंश है? तो कृष्ण का अंश है। अहम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ मेरे से ही उद्गम होता है। किससे हो रहा है? कृष्ण से उद्गम हो रहा है। तो सब कुछ क्या है? हम तो दो चीजें देखते हैं ना, भगवान देख लिए, जीव देख लिए, प्रकृति देख ली, तीन चीजें देख ली हमने। जीव किसका अंश है? ममय वंश जीव लोक है, जीव भूत है समुद्र। किसका अंश है? भगवान का। एक छोटे से उदाहरण से समझिए, आप एक बर्फ का घड़ा बताइए, बर्फ का, उसमें पानी भरिए, उस घड़े को तालाब में छोड़ दीजिए, तालाब में पानी है, घड़ा पानी का बना है, घड़े के अंदर भी सब कुछ क्या है? पानी। इसी तरह सब कुछ क्या है? परंतु जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता, वासुदेवम सर्वमिति, वो फिर देवताओं की शरण में जाता है। तो उसने अभी भगवान को सब कुछ स्वीकार नहीं किया। अब उसके मन में क्या बात आ गई है कि भगवान अलग हैं और देवता स्वतंत्र हैं। नाम अपराध हो गया ना, देवताओं को स्वतंत्र मान लिया और उनकी पूजा अर्चना में लग गया, उनकी भक्ति में लग गया। तो जब देवताओं की भक्ति में लग जाता है तो क्या कहा जाता है? कामेश्चित्त ज्ञानं प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। जिनकी बुद्धि, आप भगवान को वासुदेवम सर्वम इति स्वीकार करेंगे तो बुद्धि से स्वीकार करेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे? समझ में किससे आएगी? बुद्धि से आएगी ना। समझ किससे आती है? बुद्धि से आती है ना। पर आपकी बुद्धि ने स्वीकार नहीं किया, हमें तो स्वीकार नहीं है। अब बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही है तो फिर आपकी बुद्धि में एक वेरिएशन आई, एक नया भाव उदय हो गया कि ये इनके अलावा भी कुछ है जिससे मुझे बेनिफिट मिल सकता है। वो बेनिफिट देने वाला कौन है? देवता देंगे। यही बात जो है भगवान देवता कह रहे हैं सातवें अध्याय के 20वें श्लोक में कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, तब वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। उस देवता की पूजा कैसे करनी है इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान देने वाले बहुत हैं, ज्ञान देने वाले बहुत हैं। वेदों का जो कर्मकांड पोर्शन है उससे यही ज्ञान मिलता है, और जिन्होंने जो है वेदों का उतना ही पोर्शन पढ़ा है उसी को फाइनल स्वीकार कर लिया है, आगे नहीं बढ़े हैं, वो ये स्वीकार करते हैं कि भाई देवता की पूजा कर ली, उनके विशेष विधि विधान है उसके अनुसार पूजा कर ली तो हमारा काम सफल हो जाएगा। अब भगवान क्या कह रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं जिससे वह उस विशेष देवता की भक्ति कर सके। क्या निष्कर्ष निकलता है? आपके इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश कहा जाता है ना उन्हें, किसकी इंद्रियों के स्वामी है? आपके, आपके हृदय में विराजमान है। चूंकि आपका मन क्या सोच रहा है, आपकी इंद्रियां क्या कार्य मन को ट्रांसफर कर रही हैं, उससे क्या भाव उदय हो रहे हैं, बुद्धि किस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपकी इंद्रियां चाहे कर्म की हैं चाहे ज्ञान की हैं, आपका मन आपकी बुद्धि इस सब का ज्ञान जो है भगवान को है, और वो आपके हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान। क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? कुछ तो कर रहे होंगे ना, भगवान विराजमान है तो कुछ तो करेंगे ही। क्या कर रहे हैं? व्हाट इज यू डूइंग? उपदृष्टा है, साक्षी है, अनुमंता है, आपको अनुमति देते हैं, आपका मन जिस कार्य को करने को करेगा उसकी अनुमति प्रदान करते हैं। देख रहे हैं क्या डायरेक्शन में ये जीव जा रहा है, इसकी बुद्धि इसका मन इसकी इंद्रियां क्या भाव ले रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं, क्या सोच रहा है क्या कर रहा है, इस सबके वो साक्षी। अब उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति है ये देवता की भक्ति करने के लिए जा रहा है। अच्छा चलो मेरी ना सही, देवता की तो कर रहा है ना, क्योंकि जीव को फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट विल पावर है, उसको कार्य करने की कर्म करने की इच्छा करने की स्वतंत्रता है, और भगवान उस स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं चलो मेरी भक्ति नहीं कर रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है, मेरी सेवा में नहीं लग रहा है, मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, चलो मेरे भक्त जो है देवता उनके बारे में सोच रहा है, अपनी इच्छा पूर्ति करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसकी श्रद्धा उस देवता में फिक्स कर देता हूं। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि देवता में इतनी शक्ति नहीं है कि आप उसकी पूजा कर रहे हो तो आपकी भक्ति आपकी श्रद्धा अपने में फिक्स कर सके, नहीं तो भगवान को ये शब्द कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि मैं उसकी श्रद्धा फिक्स कर देता हूं। वो कहते हैं सिंपल भाषा में बोलते कि मैं परमात्मा स्वरूप में स्थित हूं, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं थी, क्यों स्पेसिफाई किया? सिंपल कहते हैं जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है वो देवता उसकी श्रद्धा अपने में स्थिर कर लेता है, ऐसा तो नहीं कहा ना? कैसा कहा? क्या बोला? कि जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को उसमें स्थिर करता हूं। यहां रूपा जी परपट के अंदर कह रहे हैं कि कार्य अल्टीमेटली कौन कर रहा है, आगे बात चल के चर्चा आगे जाके आएगी कि देवता भी जो है कोई भी फल भगवान की परमिशन के बिना नहीं दे सकता। क्योंकि उनके पास भी फल देने की अपनी अपनी लिमिटेशन है। अगर आपने अग्निदेव की पूजा करी है तो उनसे वही फल मिलेगा जिसकी उनके पास जिम्मेदारी है देने की। अग्निदेव की पूजा करने से वर्षा नहीं होने वाली, देश मिलेगा, पर अग्निदेव की पूजा करने से वर्षा नहीं होने वाली। और कुबेर की पूजा करने से धन मिलेगा, उसकी पूजा करने से वर्षा नहीं होने वाली। हरेक की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट हैं, अपने अपने डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, उसी के अनुसार फल दे सकते हैं, दूसरे के डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस नहीं। तो भगवान कहते हैं ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है, लाभ केवल मैं देता हूं, फल केवल मैं देता हूं और कोई नहीं देता, ये मेरा अरेंजमेंट है, ये सारी प्रोग्रामिंग मेरी करी हुई है, किसको क्या देना है, किसके थ्रू देना है। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो देवता के पास न जाके मेरे पास आते हैं। कैसे आते हैं? आपने कहा, एक छोटा सा उदाहरण है, एक भिखारी जो है राजा के पास गया और राजा से कहने कुछ याचना करने गया, डिमांड करने गया, तो द्वारपाल ने रोक दिया। उसने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। बोले तो क्यों नहीं जा सकते? इसलिए राजा जो है वो भगवान से मुखातिब है, उनकी पूजा कर रहा है। तो बोले पूजा में क्या कर रहा है? अरे भगवान से राज्य के लिए सुख शांति मांग रहा है, प्रजा के लिए बहुत धन धान्य की इच्छा कर रहा है, मतलब भगवान से वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो याचक जो है भिखारी कहता है जब ये उनसे मांग रहा है तो मैं ही उनसे क्यों ना मांगू, इससे क्यों मांगू। जब ये जो भिखारी का थिंकिंग बिल्कुल बदल गई कि जब राजा भगवान से मांग रहा है तो मैं भी भगवान से क्यों ना मांग लूं, मैं इस राजा के पास क्यों मांगने चला आया। तो भगवान यही कहते हैं चतुर्वेदा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्चना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च प्रदर्शनो, कि चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आप भगवान से अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो, आपको अगर इच्छा चाहिए, आपको डिमांड है, आपको भौतिक संसार को भोगने की इच्छा है, तब भी आपको देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, भगवान के पास जाइए। भगवान आपको सब कुछ देते हैं बट कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या है? कि आप महात्मा नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे? पुण्यात्मा। महात्मा में और पुण्यात्मा में फर्क आ जाएगा। अब आप जो है अपनी इच्छा की पूर्ति की चेष्टा कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के पास आ रहे हैं। आर्त, आर्त कौन होता? दुखी। जो दुखी व्यक्ति है वो भगवान की आरती करता है, क्या कहता है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन पे, यही गाता है ना, यही बोलता कि नहीं बोलता? मतलब वो भगवान से आरती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे दुख दर्द आप दूर कर दीजिए। जिज्ञासु ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान मिल जाए मुझे किसी तरीके से, सांसारिक सुख भोगने का कैसे प्राप्त करना है वो भी ज्ञान मिल जाए, आपके पास आने का क्या फायदा होगा वो भी ज्ञान मिल जाए, आपके पास नहीं आऊंगा नुकसान क्या होगा वो भी ज्ञान मिल जाए, वगैरह 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 सारे ज्ञान प्राप्ति की कोशिश कर रहा। अर्थार्थी जिसको धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए भोगने के लिए, वो भी आपके पास आता है। और ज्ञानी जो केवल आपको चाहता है, एक भक्ति विशिष्टते जो केवल आपको चाहता है, वो भी आपके पास आता है। तो भगवान के पास जो है जो चार व्यक्ति जाते हैं, जो उनसे कुछ डिमांड करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, वो सारे पुण्यात्मा कहलाते हैं, पुण्यात्मा। परंतु हम लोगों को क्या बनना है? पुण्यात्मा बनना है कि महात्मा बनना? क्या बनना? तो कह रहे महात्मा, कितने लोग महात्मा बनने को तैयार है? अभी भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे, शर्म नहीं आए, लज्जा नहीं करो, अब महात्मा ही बनना है। महात्मा क्या है? वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ भगवान को समझना है, एवरीथिंग, सब कुछ भगवान है, सब कुछ कृष्ण है और कोई नहीं। जहां कभी ये बात कहते हैं कृष्ण तत्व भेदा, जो कृष्ण के तत्व को समझता है उसका अर्थ क्या है, कृष्ण तत्व वेता, कृष्ण के तत्व को जानने वाला अर्थात तत्व को समझने वाला, जिसको तत्व का ज्ञान है उस तत्व का अर्थ क्या है। सिंगल लाइन आंसर, कृष्ण ही ब्रह्म है, कृष्ण ही भगवान है और कोई नहीं। इस बात को स्वीकार कर लेना, इस बात को समझ जाना, तब आपके मन में जो है किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। यस, व्हाट इज माय टारगेट, क्या मुझे अचीव करना है, क्या मुझे प्राप्त करना है और किस तरह से प्राप्त करना है, तब आपके मन के अंदर कोई भ्रम नहीं रहेगा। यहां यही कही जा रही है और लास्ट में जो है भगवान क्या कहते हैं कि वो अल्प बुद्धि वाले लोग जो देवताओं की शरण में जाते हैं उनको प्राप्त होने वाले फल भी सीमित और क्षणिक होते हैं, लिमिटेड। एक व्यक्ति जो है गरीब घर का था, बहुत झोपड़ी में रहता था, इंसिडेंटली जो है उसने कुछ ऐसा कार्य कर दिया कि राजा उससे खुश हो गया। राजा ने उससे कहा कि तुम मांगो क्या मांगते हो, डिजायर तुम्हारी है फुलफिल मैं करूंगा। तो क्या मांगा उसने? नहीं, नहीं। गरीब घर का है, झोपड़ी में रहता है, बिल्कुल खाने को रोटी नहीं है, मतलब पूरे हाल है, बड़ा पूर सी कॉलोनी है, जो कि झोपड़ी टाइप जगह में रहता है वो। उसने राजा से क्या मांगा? मेरे घर आ जाइए, मैं आपके चरण अपने घर में पटालना चाहता हूं, आपको मेरे घर आना पड़ेगा। क्या लाभ हुआ? बंगला मानता, फार्म हाउस मानता, महल मानता, धन दौलत मानता, उसने कुछ नहीं मांगा। उसने कहा कि आप अपने चरण मेरे घर में डाल दीजिए। क्या लाभ हुआ? कि राजा को अपने महल से उसके घर में जाना है, पूरी कॉलोनी की शक्ल बदल गई, उसका घर तो ऑटोमेटिकली सुंदर बना दिया गया, महल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि राजा चुप्पी भी तो जाएगा नहीं। तो हम जब जो है भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान हमारे घर में विराजिए, तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे पीछे लक्ष्मी भी चली आएगी, मांगना नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि वो जो फल है और जो पक्का मकान बन गया गरीब आदमी का, कॉलोनी सुधर गई, वो टेम्पररी था कि परमानेंट था? ऐसा तो है नहीं कि आज कॉलोनी मकान पक्का बनाया और कल फिर कच्चा झोंपड़ी में बना दिया, पक्का हो गया तो हो गया। तो भगवान के द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं वो सीमित और क्षणिक नहीं होते, परमानेंट। और फिर आगे कहते हैं देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं कि तुम मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। कि जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरी भक्ति कैसे करते हैं, अनन्य चिंतो यंतो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहामी है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उसे पूरा करता हूँ, जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो यहां जो है प्रभुपाद जी इसके परपट स्पष्ट लिख रहे हैं, यदि कोई वर की पूर्ति चाहता है तो भगवान के पास जाके प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि तभी उसकी पूर्ति होगी। किसी की इच्छा पूर्ति के लिए किसी देवता के पास अलग से जाने की आवश्यकता नहीं। यहां पर क्या शेड्यूल चलता है? संसार जो आज बाहर का संसार क्या शेड्यूल चलता, सोमवार एक के पास, मंगलवार दूसरे के पास, बुधवार तीसरे के पास, बृहस्पतिवार चौथे के पास। ओहो, इसका तो कोई है ही नहीं, चलो नया पैदा कर, नया बना लेते हैं, किसी को एक नया और बना लिया, नया और बना लिया, चलो उसकी ड्यूटी हो गई। और भी सिंपल आदमी आया, कहता है कंफ्यूजन में रहता ही नहीं, आई डोंट कंफ्यूज माई सेल्फ। सोमवार किसकी करनी है, मंगल किसकी करनी है, बुध किसकी करनी है, बृहस्पति किसकी करनी है, मेरे पे कंफ्यूजन है ही नहीं। फिर तुम क्या करते हो? बोले मैं ये कहता हूं आज जिसकी ड्यूटी हो मेरी अरे सुन ले, आज जो भी ड्यूटी पे है वो मेरी अरे सुन ले, तो मुझे कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हमारे समाज की व्यवस्था, दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग। आप किसी से भी मिलोगे जाके तो उसने अपने दिन डेज फिक्स किए हुए हैं कि आज किसके पास जाना है, कल किसके पास जाना है। और भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरे धाम को आना चाहता है उसे केवल मेरे पास ही आना है और किसी के पास नहीं आना। फायदा क्या है भगवान के धाम जाने का? कि वहां से लौटकर वापस नहीं आना। अर्थात आप जो है 84 लाख योनियों के चक्र से छूट जाते हैं। हरे कृष्णा। आज बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं तो आज चर्चा करते हैं। श्रीवास पंडित पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि और गौर भक्तवृंद के पंचम तत्व। श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के पूर्व नवद्वीप में निवास करते थे। श्रीवास श्री कृष्ण नाम कीर्तन श्री कृष्ण पूजा अर्चना तथा प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान जैसे भक्ति कृत्यों से व्याप्त अपने भ्राताओं श्री राम श्री निधि श्रीपति के जीवन में उनका मार्गदर्शन करते थे। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के संग में उन्होंने भागवत अध्ययन किया था तथा भगवान के अवतार हेतु प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना क्यों की? क्योंकि केवल श्री कृष्ण का अवतार ही उस समय नदियां को उत्पीड़ित करने वाले निर्नीत नास्तिकों तर्क शास्त्रियों और तथा दम्भी पंडितों के मध्य पुनः वैष्णववाद स्थापित कर सकता था। असुरों का वध नहीं हुआ, यहां क्या हो रहा है? वैष्णववाद की स्थापना और असुरों पे प्रेम बांट के उनको प्रेमा भक्ति प्रदान करी। श्रीवास की पत्नी मालिनी सची देवी की परम सखी थी। वे धात्री के रूप में श्री निमाय की सेवा करती थी। जब विश्वंभर प्रकट हुए तो समस्त भक्तगण के हृदय वात्सल्य भाव से संपूर्ण हो गए। गौरचंद्र मालिनी एवं श्रीवास से दूसरे माता पिता के सदृश प्रेम करते थे। श्रीवास आंगन निमाय की बाड़ी घर से 200 गज उत्तर की ओर स्थित था। श्रीवास पंडित के भव्य भवन में विशाल सुखद कक्ष, एक ऊंची सुरक्षात्मक सीमा प्राचीर तथा हरे भरे सघन पर्णिल कुंज व निकुंज थे। प्रत्येक रात्रि गौरांग महाप्रभु वहां उनके प्रिय मित्र वहां हर्षोन्मादक कीर्तनों का आनंद उठाते और वृंदावन के रसों का आस्वादन करते। यहीं पर मुसलमान काजी ने क्रोधावेश में श्री कृष्ण के संकीर्तन आंदोलन को दबाने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयास में उनका पवित्र मृदंग तोड़ दिया था। ये घटना के अनंतर श्रीवास आंगन खोल भंग डांगा वे स्थान जहां मृदंग तोड़ा गया था के नाम से विख्यात हो गया। काजी ने संकीर्तन पर रोक संबंधी एक अध्यादेश जारी किया और कहा गया कि उल्लंघनकारियों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुसलमान बना लिया जाएगा। वे अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे। यद्यपि अधिकांश नदिया वासी इस आदेश से भयग्रस्त हो गए, श्रीवास पंडित इस मतान कानून पर हंस दिए। श्रीवास आंगन के भीतर भगवान को और सुंदर ने अपने समस्त नित्य पार्षदों को अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए। श्रीवास पंडित का घर गौरांग के संकीर्तन आंदोलन का मुख्यालय था। यहीं पर दैनिक भागवत कथा रात्रि कीर्तन तथा भगवान और राय की अनेक अंतरंग प्रजलीलाएं घटित हुई। ब्राह्मण समुदाय के मुख्य विद्वानों श्रीवास पंडित एवं श्री अद्वैत आचार्य ने अपना संपूर्ण सामर्थ्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने अपने तन मन सदन प्रियजन परिजन तथा सकल संपत्ति गौरांग महाप्रभु की सेवा में भेंट कर दी। वे किसी अन्य देवी देवता को नहीं जानते थे। श्रीनिवास पंडित अपने परिवार का भरण पोषण इसलिए नहीं करते थे कि उनके संबंधी थे, वरना इसलिए कि वे श्री चैतन्य के प्रेमी सेवक थे। श्रीनिवास पंडित जीव तत्व है, बद्धजीवों के हितैषी थे। गौरांग महाप्रभु के संघ संगीतन आंदोलन के प्रचार प्रसार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीनिवास पंडित लोक रूपांतर के प्रचारक और भगवान के निष्ठावान उपनिषद नारद मुनि हैं। उनकी समाधि 64 विद्यापीठ में। श्री गदाधर दास गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के मूलतः दो समूह हैं। एक समूह जैसे कि द्वादश गोपाल, अभिराम गोपाल, गौरीदास पंडित, धनंजय इत्यादि साख्य भाव में श्री नित्यानंद प्रभु की सेवा करते हैं, और दूसरा समूह सदैव माधुर्य दस में संलीन रहता है। श्री गदाधर गोस्वामी चंद्र कांति गोपी राधा रानी की कांति की एक विस्तार स्वरूपा एवं पूर्णानंदा, भगवान बलराम की प्रिय सखी की एक विस्तार स्वरूपा का संयुक्त स्वरूप है। इस प्रकार गदाधर दास चैतन्य महाप्रभु एवं श्री नित्यानंद प्रभु दोनों के ही संगी हैं। कृष्णदास कविराज चैतन्य महाप्रभु को राधा भाव द्योति सुमिलित अर्थात श्रीमती राधा रानी के भाव एवं कांति से युक्त कहकर वर्णित करते हैं। गदाधर दास वे कांति हैं। गदाधर दास को कभी कभी श्री राधिका के दिव्य देवती का मूर्त रूप भी कहा जाता है। नित्यानंद प्रभु के संग यात्रा करते समय गदाधर कभी कभी माधुर्य प्रेम में तन्मनस्क हो जाते थे और एक ब्रजभूमि की भांति व्यवहार एवं वार्तालाप करने लगते। गंगा जल से भरा कलश अपने शरीर पर धारण कर मानो मैं गोपी हूँ वे पुकार उठते, दूध ले लो, दही ले लो। बंगाल में नित्यानंद प्रभु एक प्रमुख प्रचारक के रूप में गदाधर दास ने अनगिनत पापियों, नास्तिकों एवं यवनों का उद्धार किया। एक बार कृष्ण प्रेम के रस में लीन वे काजी के भवन के समक्ष उन्मत्तापूर्ण नृत्य करते एवं कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे। गुप्त मुसलमान दंडाधिकारी शांति भंग करने हेतु उन्हें प्रताड़ित करने के लिए अपने घर के बाहर आतंका, किंतु गदाधर दास के उज्ज्वल आकर्षक रूप को देखते ही काजी स्तब्ध रह गया और उसका क्रोध शांत हो गया। गदाधर ने स्नेहपूर्वक काजी को आलिंगन बद किया और कहा, हरि नाम रसामृत के वितरण द्वारा दिव्य प्रेम से सबका उद्धार करने हेतु गौर नित्यानंद प्रकट हुए हैं, आप यह मधु हरि नाम क्यों नहीं ले लेते? मैं कल हरि नाम लूंगा, काजी ने उत्तर दिया। अनजाने में काजी के मुख से हरि नाम श्रवण कर गदाधर हर्षित हो उठे। उन्होंने कहा, कल क्यों, आपने तो आज ही हरि नाम ले लिया है। अरे प्रभावशाली हरि नाम आपके पापों का नाश कर देगा, आपके जीवन को विमल बना देगा। उस दिन से काजी ने गदाधर दास को स्वामी की शरण ग्रहण कर ली और इनकी समाधि भी 64 समाधि पीठ में है। और इसके बाद है श्री धनंजय पंडित। श्री चैतन्य भागवत में धनंजय पंडित का वर्णन एक विलक्षण महंत के रूप में किया गया है, अर्थात एक महान व्यक्ति के समस्त लक्षणों द्वारा विभूषित। महाप्रभु की आज्ञा पर वृंदावन जाने के पूर्व उन्होंने भगवान गौरचंद्र की नवदीप कीर्तन लीला में भाग लिया। केवल एक कमंडलू धारण किए किंतु श्री कृष्ण एवं श्री चैतन्य के प्रेम में मग्न उन्होंने व्यापक भ्रमण कर प्रचार किया। उन्होंने गौर निताई श्री गोपीनाथ श्री दामोदर के अर्च विग्रहों की स्थापना की। ब्रज लीला में भगवान बलराम के द्वादश गोपालों में से एक वासुदाम है, उनकी समाधि 64 पीठ समाधि में है। और अंत में आज का मुख्य कार्यक्रम गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के बारे में कितने लोग जानते हैं? ये तो हो रहा है सबको पता, कुछ डिटेल। कुमारावस्था 1 से लेकर 5 साल, भौगंड अवस्था 5 से 10 साल, किशोर अवस्था 10 से 15। परंतु ये अवस्थाएं भगवान ने बड़ी क्विकली पार करी, मतलब 5 साल के बजाय शॉर्टन कर दिया। तो जो कार्य उनको 11 वर्ष की अवस्था में आरंभ करना था वो 7 वर्ष की अवस्था में आरंभ हो गया। मैच्योरिटी इतनी थी कि वो समय से पहले हो गई थी। जब छोटे थे तो बछड़ों को चराने की परमिशन थी, और जब बड़े हो गए तो माता यशोदा ने सोचा कि अब इनको जो है थोड़ा सा बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए, इनको गोचारण की सुविधा अब मिलनी चाहिए। तो उन्होंने नंद महाराज के साथ जो है एक मीटिंग करी और उसके अंदर जो है फैसला किया गया कि अब एक पूजा का आयोजन किया जाए और इनको जो है अब गौचारण का परमिशन दे दिया जाए। आज से ये गौओं को चराने के लिए जाएंगे। तो एक भव्य पूजा का आयोजन किया गया, गौ पूजा करी गई और भगवान कृष्ण को गौचारण की परमिशन उस दिन ग्रांट कर दी गई। ये जो गोपाष्टमी है ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी में सेलिब्रेट होती है। शुक्ल पक्ष चल रहा है ना कार्तिक मास का। राधा रानी का मन कृष्ण के बिना नहीं लगता। अब भगवान तो जा रहे हैं गोचारण के लिए तो राधा रानी क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो उनका जो राधा रानी का रंग रूप है वो भगवान की सखा सुबल से मिलता है। तो उन्होंने जो है सुबल के वस्त्र पहन के साथ हो लेती थी, साथ साथ चली जाती थी। ये लीला कहां हुई? जो व्यवस्था है जो ये जो बड़ा यज्ञ किया गया उस दिन परमिशन दी गई ये लीला कहां पर हुई? टेर कदम्ब तो उस जगह का नाम है, टेर कदम्ब में लीला नहीं हुई, लीला नंदग्राम में हुई है। टेर कदम्ब का अर्थ क्या है? टेर कहते हैं आवाज को, आवाज। कदम्ब के पेड़ पर बैठ के भगवान कृष्ण जो है जब गोचारण हो रहा था, गोचारण जब परमिशन मिल चुकी थी शादी, तो उस वक्त जो है भगवान उस कदम के वृक्ष पे बैठ के गौओं को पुकारा करते थे। शाम को जैसे इकट्ठा करके चलना है तो दिन में 3 बार पुकार लगाते थे। इसलिए जो है वो जगह टेर का मतलब होता है पुकार, तो पुकार की वजह से कदम के पेड़ पे पुकार लगती थी, इसलिए उसे टेर कदम कहा गया है। टेर कदम पे लीला नहीं और एरिया वही मीन्स इट इज दैट एरिया। नंदग्राम का जो महल है, महल के सामने वाला जो पोर्शन है, राशेश्वर महादेव जहां पर विराजमान है उसके आसपास का जो एरिया है उसके अंदर जो है लीला हुई है, वहां पर गोपाष्टमी आज भी सेलिब्रेट हो रही होगी। आज जाएंगे तो मुख्य गोपाष्टमी का त्यौहार जो है ब्रजवासी जो है उसी जगह पर सेलिब्रेट करते हैं और वहीं पर जो है टेर कदम है जहाँ हम लोग 17 तारीख को जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है? 17 तारीख को जो है जो विजिट है वो नंदग्राम में है और उसके बाद टेर कदम पे। पिछली बार भी गए थे टेर कदम पे, गए थे लास्ट ईयर, लास्ट ईयर गए थे। बरसाने के पहले गए थे ना टेर कदम? नहीं, टेर कदम गए थे, प्रसाद पाया वहां बैठ के भाई। लास्ट ईयर गए थे ना टेर कदम गए थे, मुझे याद है। प्रोग्राम बड़े मंदिर में बनता है तो मुझे मालूम रहता है। तो आज का दिन इतना ही, अभी गोपाष्टमी है, वो पूजा है, सब लोग पार्टिसिपेट करिए इसमें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, श्री कुमार की जय।